हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विधिक ने इशारे से म्यूजिक चेंज करने को कहा। जैसे ही म्यूजिक चेंज हुआ और डांस करते हुए सभी कपल्स घूमे तो सबके कपल्स चेंज हो गए। विधिक ने आंची को खींचकर अपने पास कर लिया। विधिक के पास आते ही आंची ने घंघराकर अमन की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने को कहा। विधिक ने आंची को कुछ नहीं कहा, उसने आंची को बहुत टाइटली पकड़ रखा था और इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देख रहा था। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा। डांस करते हुए विधिक ने आंची को लिफ्ट कर लिया। आंची उससे दूर जाना चाहती थी पर विधिक ने उसे मौका नहीं दिया। यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूँ तेरा हो, रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं, मैं तो यहाँ से बस वहाँ, तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा बाधक है एक मेरा, बाहों ने तुझको रखूं, धड़कन मैं तेरी सुनूं, आ इतना नज़दीक आ जरा हो, जिसमें दुआएं रहें हरदम वफाएं रहें, दूं तुझको ऐसा एक जहां, तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा बाधक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। डांस करते हुए बीच में विधिक आंशी को पकड़ वहां से ले गया। उसने आंशी का हाथ कसकर पकड़ा रखा था और अगले ही पल दोनों उसी फ्लोर के किसी रूम में थे। वहां आते ही विधिक ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आंशी को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसने अपने हाथों से आंशी को पकड़ रखा था और उसके बिल्कुल करीब था। विधिक, विधिक छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो, आंशी रोने लगी। विधिक पर उसके आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसके बिल्कुल करीब था, उन दोनों की नोज टच हो रही थी। विधिक ने सर्द लहजे में कहा, और मेरे दर्द का क्या बटरफ्लाई, मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब वो तुम्हारे करीब आ रहा था। हमारी शादी हुई है, आंची ने डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विधिक हल्के से हंसा और फिर कहा, मैंने तुम्हें बटरफ्लाई नाम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उड़कर कहीं भी चली जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आग के इर्द गिर्द कोई भी तुम्हारे साथ साथ फेरे ले भी ले तो। बोलते हुए विधिक आंची से दूर गया। वो एक टक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आंची पैनिक करते हुए रो रही थी। छुआ नहीं ना उसने तुम्हें, अचानक विधिक ने आंची से पूछा। आंची ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। आंची के कोई जवाब ना देने पर विधिक गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, जवाब दो बटरफ्लाई, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ ना। आंची ने रोते हुए ना में सिर हिलाया। उसके ना कहते ही विधिक ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। तुम रो क्यों रही हो बटरफ्लाई, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है तुम मेरे अलावा किसी को अपने पास नहीं आने दोगी, विधिक ने कहा। आंची उससे दूर होने के लिए कसम सा रही थी। कुछ ही देर में विधिक ने खुद ही उसे छोड़ दिया। डर लग रहा है तुम्हें मुझसे, विधिक ने पूछा, जिस पे आंची ने हामी सिर हिलाया। उसके हामी भरते ही विधिक बोला, डरना भी चाहिए, अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से सबसे दूर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊँगा। तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, तुम खुद मेरे पास आओगी, अपनी जिंदगी से जुड़े हर एक शख्स से रिश्ता तोड़कर बस मेरी होने के लिए खुद मेरे पास आओगी, मैं इस बार कोई मेस नहीं चाहता बटरफ्लाई। प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। आंशी उसकी बात बीच में काट कर बोली, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बटरफ्लाई, तुम क्यों भूल जाती हो? इस एक हफ्ते में तुम अपने से जुड़े हर शख्स को खुद से दूर कर दो, वरना मैं सबको भगवान के पास पहुंचा दूंगा। जानती हो तुम्हें ये एक हफ्ता क्यों दे रहा हूँ? ताकि तुम सबको खुद से नफरत करने की वजह दे सको और कोई तुम्हें ना ढूंढे। अपनी बात खत्म करने के बाद विधिक कुछ पल रुका और फिर आंशी से कहा, और हाँ, अपने उस सीक्रेट एजेंट हस्बैंड के भरोसे मत रहना, कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले मैं उसी की जान लूँ। विधिक की बात सुनकर आंशी ने नजरें उठाके उसकी तरफ देखा। ये उसके लिए नई बात नहीं थी जब वो बेरहमी से किसी की जान ले लेता था, और उससे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता था। सबको मारने से अच्छा है तुम मुझे ही मार दो, आंशी ने नफरत से कहा। अच्छा, तो तुम खुद को चोट पहुंचाना चाहती हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है आंशी, विधिक ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने इधर उधर देखा तो वहाँ साइड में फ्रूट बास्केट के साथ नाइफ रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और एक झटके में अपने हथेली पर एक बड़ा सा कट मारा। अगले ही पल विधिक के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर आंशी घबरा गई। उसके बाद विधिक ने चाकू आंशी के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया और कहा, लो अब तुम्हारी बारी, अपने हाथ को इसी तरह काट लो, मान जाऊंगा कि तुम में मेरा सामना करने की हिम्मत आ गई है। आंशी ने नाभि सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे और विधिक का पागलपन देखकर उसे डर लग रहा था। विधिक यही चाहता था कि वो उससे डरे और भी ज्यादा डरे। मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ, अपनी सनक भरी आवाज में कहा, और फिर उसने चाकू लेकर आंशी का हाथ पकड़ा और उसके हथेली पर उसी तरह का कट लगाया, पर वो उतना गहरा नहीं था। आंशी दर्द से चिल्लाई, बस इतना सा ही सहन नहीं होता, जबकि ये तो बिल्कुल भी डीप नहीं है, बस यही फर्क है हम दोनों में बटरफ्लाई। विधिक आंशी के पास आया और उसके हाथ पर अपनी रुमाल बांधते हुए बोला, तुम आज भी मेरी वही प्यारी सी, मासूम और डेलिकेट सी बटरफ्लाई हो। एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारा इसी होटल में वेट करूंगा मेरी जान। उसने आंशी के होठों पर हल्के से किस किया और वहां से चला गया। आंशी वहीं पर खड़ी रो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि विधिक जा चुका है, तो वो जल्दी से बाहर गई। बाहर अमन उसे ढूंढ रहा था। उसे देखते ही आंशी उसके गले लग गई। तुमने कहा था मैं कर लूंगी, पर मुझसे नहीं हो पाया, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है अमन, आंशी बच्चों की तरह सहमी हुई थी। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे लेकर तुरंत अपने घर गया। पूरे रास्ते दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। वही अमन के मन में फिलहाल काफी कुछ चल रहा था। शाह शाह, आज का पार्ट थोड़ा इंटेंस टाइप का था, क्योंकि कहानी की डिमांड थी। बाकी ये सब क्राइम है और विधिक भी एक क्रिमिनल, कई बार सीन के चलते ये सब लिखना पड़ता है, बाकी गलत तो गलत ही होता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं अगले भाग पर, समीक्षा कर दीजिएगा।